ओम शांति। तो ये प्रश्नोत्तर सीरीज है 24 जुलाई 1970। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज और वो संवेदनशील भी है और पावरफुल भी है। प्रश्न है, इवल स्पिरिट्स का रूप कौन सा है? इवल स्पिरिट्स का रूप कौन सा है? तो बाबा के शब्दों में जो उत्तर है, इवल स्पिरिट्स का रूप कौन सा है, तो बाबा कह रहे हैं उनका स्पष्ट रूप है किन्हीं आत्माओं में प्रवेश होना, यह स्पष्ट रूप। लेकिन इवल स्पिरिट्स का कुछ गुप्त रूप भी होता है, चलते चलते कोई में विशेष कोई ना कोई बुरा संस्कार बिल्कुल प्रभावशाली रूप में देखने में आएगा, जिसका इफेक्ट क्या होगा कि उनका दिमाग अभी अभी एक बात, अभी अभी दूसरी बात, बेबी फोर्स से कहेंगे, उनकी स्थिति भी एक ठिकाने टिकी हुई नहीं होगी। वे अपने को भी परेशान करते हैं, दूसरों को भी परेशान करेंगे। स्पष्ट रूप में जो ईवल स्पिरिट आती है उसको परख कर और उससे किनारा करना सहज है। जो स्पष्ट रूप में ईवल स्पिरिट्स आती है उसको परख कर किनारा करना सहज है, लेकिन आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप में कम आएगी, गुप्त रूप में बहुत आएगी, जिसको आप लोग साधारण शब्दों में कहते हो कि पता नहीं उनका दिमाग कुछ पागल सा लगता है। लेकिन उस समय उसमें ये ईवल अर्थात बुरे संस्कारों का फोर्स इतना होता है जो वह ईवल स्पिरिट के समान ही होती है। जैसे वह बहुत तंग करते हैं वैसे ये भी बहुत तंग करते हैं, मैंने जैसे जो स्पष्ट रूप से ईवल आती हो पता चलता है वो भी तंग करते हैं, ये भी बहुत तंग करते हैं। ये बहुत होने वाला है, 1970 की बात है, ये बहुत होने वाला है। इसलिए सुनाया कि अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, अपनी शक्ति की बचत, ये योजना बनाकर बीच बीच में उस बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी ईवल स्पिरिट बाय ईवल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा और आप लोगों का शक्ति रूप ही उनको मुक्त करेगा। ये भी सर्विस करनी है, ईवल स्पिरिट को भी मुक्त करना है, क्योंकि अभी अंत के समय का भी अंत है। तो ईवल स्पिरिट बाय ईवल संस्कारों को भी अति में जाकर फिर उनों का अंत होगा, किचड़ा सारा बाहर निकलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए उनों का सामना करने के लिए अगर अपनी समस्याओं से ही मुक्त नहीं हुए होंगे तो इन समस्याओं से कैसे सामना कर सकेंगे। इसलिए कहते हैं बचत की स्कीम बनाओ और प्रैक्टिकल में लाओ, तब अपना और सर्व आत्मा का बचाव कर सकेंगे। सिर्फ भाषण करने व समझाने की सर्विस नहीं, अभी तो सर्विस का रूप भी बड़ा सूक्ष्म होता जाएगा। इसलिए अपने सूक्ष्म स्वरूप की स्थिति को ही बढ़ाओ। ये सभी प्रत्यक्ष होकर फिर प्रायलोप होना है, प्रत्यक्ष होगा फिर प्रायलोप होना है, प्रायलोप होने के पहले प्रत्यक्ष होगा फिर प्रायलोप हो जाएंगे। सर्विस इतनी बढ़नी है जो एक एक को 10 का कार्य करना पड़ेगा। तो ये प्रश्न था, इसमें बाबा ने बताया कि कैसे आत्माएं आएंगी स्पष्ट रूप से या गुप्त रूप से, और फिर उनके क्या लक्षण हैं, और उनसे मुक्ति का साधन अपनी स्थिति को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और समस्याओं से कैसे मुक्त होना है, कौन सी स्कीम बनानी है। तो इसमें 2-3 एग्जाम्पल भी अब हम सुनाएंगे, एक और हम फिर से पढ़ लेते हैं इसको। उनका स्पष्ट रूप है किन्हीं आत्माओं में, किसका, जो ईवल स्पिरिट्स हैं उनका रूप बाबा बता रहे कौन सा रूप होगा ईवल स्पिरिट्स का, ईविल स्पिरिट्स आत्माएं, उनका स्पष्ट रूप है किन्हीं आत्माओं में प्रवेश होना, लेकिन इवल स्पिरिट्स का कुछ गुप्त रूप भी होता है। चलते चलते कोई में विशेष कोई ना कोई बुरा संस्कार बिल्कुल प्रभावशाली रूप में देखने में आएगा, जिसका इफेक्ट क्या होगा कि उनका दिमाग अभी अभी एक बात, अभी अभी दूसरी बात, बेपंदी के लोटे, अभी अभी कुछ बोलेंगे, अभी कुछ बोलेंगे, बेबी फोर्स से कहेंगे। उनकी स्थिति भी एक ठिकाने टिकी हुई नहीं होगी, वे अपने को भी परेशान करते हैं, दूसरों को भी परेशान करेंगे। स्पष्ट रूप में जो इविल स्पिरिट आती है उसको परख कर और उससे किनारा करना तो सहज है, लेकिन आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप में कम आएगी, गुप्त रूप में बहुत आएगी, जिसको आप लोग साधारण शब्दों में कहते हो कि पता नहीं उनका दिमाग कुछ पागल सा लगता है, लेकिन उस समय उसमें ये इवल अर्थात बुरे संस्कारों का फोर्स इतना होता है जो वह इवल स्पिरिट के समान ही होती है। जैसे वह बहुत तंग करते हैं वैसे ये भी बहुत तंग करते हैं, जैसे स्पष्ट रूप वाले और गुप्त रूप वाले भी, ये बहुत होने वाला है। इसलिए सुनाया कि अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, अपनी शक्ति की बचत, ये योजना बनाकर बीच बीच में उस बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ, ये विधि है। जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इवल स्पिरिट व इवल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर बार नहीं करेगा, जितना ये बिंदी रूप की प्रैक्टिस होगी, और आप लोगों का शक्ति रूप ही उन्हों को मुक्त करेगा। ये भी सर्विस करनी है, इवल स्पिरिट को भी मुक्त करना है, क्योंकि अभी अंत के समय का भी अंत है, तो इवल स्पिरिट व इवल संस्कारों को भी अति में जाकर फिर उन्हों का अंत होगा, किचड़ा सारा बाहर निकलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए उन्हों का सामना करने के लिए अगर अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं हुए होंगे तो इन समस्याओं से कैसे सामना कर सकेंगे। इसलिए कहते हैं बचत की स्कीम बनाओ और प्रैक्टिकल में लाओ, तब अपना और सर्व आत्माओं का बचाव कर सकेंगे। सिर्फ भाषण करने व समझाने की सर्विस नहीं, अब तो सर्विस का रूप भी बड़ा सूक्ष्म होता जाएगा, इसलिए अपने सूक्ष्म स्वरूप की स्थिति को भी बढ़ाओ। यह सभी प्रत्यक्ष होकर फिर प्रायलोप होना है, प्रायलोप लोप होने के पहले प्रत्यक्ष होगा फिर प्रायलोप होंगे, माना वो संस्कार प्रत्यक्ष होंगे, फिर उनको जो मुक्ति का अगर मार्ग मिल गया तो फिर वो प्रायलोप हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। सर्विस इतनी बढ़नी है जो एक एक को दस का कार्य करना पड़ेगा। तो यह है, एक तो आत्माएं आती हैं गुप्त रूप से, तो वो तो हमने चार पांच केस देखे हुए हैं, एक केस तो यही देखा हुआ है, रात्रि के टाइम में सूरज भाई के साथ ग्रुप मीटिंग हो रही थी, तो हम इतने बैठे हुए थे, सूरज भाई वहां बैठे हुए थे, यहां वो बहन बैठी थी, एक देवेंद्र भाई थे शायद उसमें ना, उस ग्रुप में आप भी थे, हाँ माता जी भी थे। तो कैसे कैसे आत्माएं आती है गुप्त और प्रत्यक्ष दोनों पर चर्चा करेंगे। तो बाबा ने बोला ना, प्रत्यक्ष जो आती है उनके उनसे मुक्त होना सहज है क्योंकि वो दिखाई दे रही है, लेकिन जो अप्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रही है उससे मुक्त होना बड़ा कठिन है, और वो हो सकता है हमको भी अटैक करती है, और उसके निशानी आ गए जो हमको गुप्त रूप से अटैक कर रही है, क्या निशानी होगी, हमारे ऊपर भी आत्माओं का प्रभाव है, ऐसा नहीं है क्योंकि अनेक जन्मों से हमारा तो हिसाब किताब रहा हुआ है। अब ऐसा नहीं हम बाबा के बन गए तो बिल्कुल ही मुक्त हो गए, और उसके क्या निशानी है कि हमारे ऊपर भी प्रभाव रहता है, दुखी दूसरे के संस्कारों से प्रभावित हो जाते हैं, बुद्धि पर वार करती है, फिर दूसरा कई बार देखो योग में बैठते तो बुद्धि चलती नहीं है, संकल्प नहीं चलेगा को, तो क्यों ऐसा क्यों, जबकि सारे ने चिंतन भी किया अच्छा किया वो फिर भी नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रभाव है, बोझ है, हाँ कोई अशांत स्वरूप आत्मा का प्रभाव होगा, शांत रूप आत्मा का तो बिल्कुल शांत हो जाएगा नहीं, फिर कई बार बोझ अनुभव होगा, सारे दिन में बोले हमने ज्ञान मनन चिंतन भी किया है, पर्याप्त नींद भी की हुई है फिर भी नींद आ रही है, तो कहीं ना कहीं तो आत्माओं का प्रभाव है। इस जीवन में हमारा कुछ नहीं है, भले हमारा जीवन निर्विघ्न चला है, लेकिन फिर भी होता है, क्यों? तो कहीं ना कहीं आत्माओं का प्रभाव हमारे पर रहता है। तो एक तो इस पर, इससे मुक्ति कैसे पानी, इस पर चर्चा करेंगे। हाँ, तो वो जो आत्मा थी वो आए थे, माता जी थे, वो माता जी तो बहुत दुबले पतले थे, यहीं बैठे थे कॉर्नर में जहां बैठल भाई की इस तरफ सोफे में, और यहाँ टेबल रखा हुआ, ये टेबल ये शायद नहीं हिलता है, बहुत मुश्किल से हिलता है ये टेबल। तो क्लास चल रही थी, क्लास पूरी हुई, फिर उसके बाद माता जी ने बोला कि मुझे एक प्रश्न करना है। तो वहां से छोटे लाल भाई ने रोक दिया उनको भी, बाद में करना अभी। सूरज भाई ने कहा कि तो चलो यो कर लेते हैं, सभी आत्माओं को इमर्ज करके विश्व कल्याणकारी स्टेज पर ग्लोब को सामने इमर्ज करके उनको सकाश दो। तो इसी दौरान वो माता जी बीच में बोल पड़े कि भाई मेरा एक प्रश्न है, तो रोक दिया भाई बाद में पूछना। अभी 10 सेकेंड ही हुए होंगे योग को चलते, और तुरंत एकदम वो माता चिल्ला पड़ी जोर से, और हमको स्पष्ट अनुभव हुआ, जैसे सभी को अनुभव हुआ, जैसे आत्मा एकदम तुरंत इधर से आई स्टक करके, और जैसे उस आत्मा के अंदर, माता जी के अंदर घुस गई, और माता जी के मुख से निकलता है कि तुम्हारा बाबा कुछ नहीं कर सकता है, अल्लाह मन मेरा अल्लाह ही करेगा सब कुछ, जो भी करेगा। वो मुस्लिम सोल को घुस गई बीच में, और वो माता जी चिल्लाने लगी तुम्हारा बाबा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करता, और दाएं हाथ से उसने टेबल पटक के फेंक दिया, और हाथ से दाएं हाथ से, और ये शीशा उधर गिर गया। तो कितनी ताकत आई होगी उस आत्मा के अंदर, क्योंकि वो शरीर से बिल्कुल लग गए, वो बड़ा बहुत फोर्स है, तो वो फेंक दिया टेबल। तो सब योग तो चल ही रहा था, तो सूरज भाई बहुत निश्चिंत रूप से बैठे रहे, बाकी तो थोड़े थोड़े निष्क्रिय हो गए थे। एक नहीं भागा कोई नहीं, योग चल रहा था पावरफुल, वैसे तो कोई इतना नहीं हुआ, लेकिन एक भाई बाद में कहते मैं तो बिल्कुल निष्क्रिय हो गया जैसे। तो फिर सूरज भाई जी ने वहां से उनको कमेंट्री दी थोड़ी, बैठ जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ऐसे समझाते समझाते वो 3-1 मिनट लगे होंगे शांत होगी, बहुत सारे बोलती रही, मानो वो उर्दू के अल्फाज बोल रही थी वो जो माता के अंदर सोल आई थी। तो 3-4 मिनट के बाद वो आत्मा शांत होगी एकदम, मानो उनको बताया कि तेरे लिए हम योग करेंगे तुम मुक्त हो जाएगी, तुम अशांति नहीं फैला, शांत रहो, इस तरह से उन्होंने बताया। तो फिर वो माता चली गई, फिर रात को आत्मा फिर आई थी उसके अंदर कमरे में, लेकिन उस समय वो माफी मांग के गई, वो आत्मा विशाल भवन में वो माता रहती थी, ये शायद 6-7 साल पहले की बात है। तो है वो दूसरी माता से जो वहां बीच में थे, वहां पर के मैं गलत कर दिया, मुझे माफ कर देना ऐसे करके। तो ये एक इंसिडेंट था कि तो स्पष्ट रूप से आत्माएं आती हैं, तो उनको कंट्रोल करना सहज है, क्योंकि उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, उनको पता चल रहा है। लेकिन जो सूक्ष्म रूप से बैठी हैं, एक तो है कि आप मुझे कह रहे हैं तो मैं उसका सलूशन दे सकता हूं, एक है आप मुझे कह नहीं रहे, आपके मन में चल रहा है, तो मैं उसको कैसे परखूंगा, तो वो बहुत कठिन है सूक्ष्म रूप से। एक बार डायमंड हॉल में मैं और निखिलेश भाई बैठे थे 5 नंबर गेट के पास में, तो वहां ग्रिल लगी हुई थी, और आगे जाने के लिए तो सबको रोका जाता था। तो एक दुबली पतली वैन थी दिल्ली से, एक सेंटर से, और वो उठ के आई, बहुत दुबली पतली थी वो भी, और उठ के ग्रिल क्रॉस करके वो जाने लगी आगे कि मुझे स्टेज पर जाना, बाबा से मिलने जाना है, बाबा से मिलने जाना है। तो बाकी आसपास तो सब सेवादारी बैठे थे, तो बहन समझ के किसी ने हाथ नहीं लगाया, लेकिन हम उठ के खड़े हो गए, और हमने तो पकड़ लिया उसको इधर से। लेकिन क्या ताकत थी उस बहन में, दुबली पतली थी एकदम, तो मैं एक पांव अपना पांव उसके पांव पर रख दिया अच्छी तरह से दबा के, और अच्छी तरह से पकड़ लिया, लेकिन फिर भी बहुत संभलना मुश्किल हो रहा था उसका। फिर मैं निखिलेश भाई जी को बोला कि आप भी पकड़ो, तो निखिलेश भाई उठ के आए, फिर हम दोनों ने पकड़ा, लेकिन दोनों से भी बड़ा मुश्किल में वो हो रही थी कंट्रोल में, वो फिर लोटपोट होगी वहीं पर ही। फिर अब दोनों उठा के उसको बाहर लेके गए, तो वहां जाके फिर निखिलेश भाई ने थोड़ा ठंडे पानी की शींटे मीटे दी उसको, थोड़ा हाथ फिर हम मस्तक के ऊपर, फिर वहां थोड़ी शांत हो गई। तो तब तक उसके साथ थी जो माता थी वो भी आ गई कि इसके अंदर कुछ आता है, तो फिर उसको हम बाहर से फिर वापस ले गया, कुर्सी पर बिठा दिया उसको, अपनी सीट दे दी, और मेरे पास एक संतरा था वो भी दे दिया उसको। तो 10-1 मिनट बैठी होगी आराम से शांतिपूर्वक, फिर वहां से 10 मिनट हुए और फिर वही हाल हो गया उसका, फिर भागने लगी आगे, मुझे तो स्टेज पर जाना है, और फिर हमने पकड़ लिया उसको बड़े मुश्किल से। तो पकड़ के फिर हम बाहर लेके आए दोनों, फिर उसको क्या किया जाए, तो लोग ना बहुत उल्टा सुल्टा कहने लग पड़े इसको, भाई जूता मारो, जूता सुंघाओ, ये करो वो करो, माना बड़ा खराब खराब करने लगे, और मुझे बहुत खराब लगा। मैं बोला एक तो आत्मा को प्रॉब्लम है बेचारी को, और दूसरा हमसे इसके ऊपर बुरी बात कर रहे हैं। तो माना मैं तो उन भाइयों को बोला भाई कुछ बोलो नहीं आप, एक तो बेचारे परेशान है, तो हमसे जो उसको मिलना चाहिए हम तो और ही उल्टा उसको डांट रहे हैं। तो वहां खैर काफी लोग इकट्ठे हो गए, फिर मैं और निकलेश उसको लेकर तपस्या धाम में चले गए थे। तपस्या धाम में पहुंचे तो वो बैठी, तो मैं उसको बोला कि आप बाबा से दृष्टि लो। मैं नहीं लूंगी दृष्टि, वो ऐसे देख रही थी बिल्कुल, दृष्टि ले ही ना बिल्कुल। तो बहुत देर उल्टा सुलटा बोलती रही, तो फिर मैं उसके सिर के ऊपर हाथ फेरा, मैं बोला देख हम तुम्हारे भाई हैं ना, हम तुम्हारे लिए कोई बुरा काम तो नहीं करेंगे ना, अगर आपके साथ आए हैं तो आपके अच्छे के लिए आए हैं, नहीं तो हमको क्या पड़ी है। ठीक है तुम तंग हो ना तो तेरी इच्छा है, परेशान हो हमको क्या लेना देना है, लेकिन हम तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं। तो हमने उसके सिर पर हाथ फेरा, तो हमने उसको पूछा कि तुम कहां से आई, जो अंदर सोलती नहीं, मैंने पहले पूछा तुम कौन हो, तो बोला मैं जितेंद्र सिंह हूं। वो बहन के अंदर वो आत्मा भाई की आत्मा थी, बोला भाई जितेंद्र सिंह, मतलब कहां से आया, बोला जयपुर से आया, मतलब कौन सा गांव, बोला वो नहीं मैं बताऊंगा। तो मैं बोला इसके अंदर क्यों आया, बोला इसने हमको बहुत तंग किया है, पूरे परिवार को इसने तंग किया है, इसको छोड़ूंगी नहीं मैं। वो इतना उसके प्रति नफरत भरी है उसके अंदर। तो फिर उसको बड़े प्यार से मैं बोला देखो जो हो गया वो तो हो गया, उसको कुछ कर नहीं सकते हैं, अभी हम तुम्हारे लिए योग करेंगे, अगर तुम इसके अंदर आती रही तो तेरा जीवन तो पिछला निष्फल हो गया, ये भी निष्फल हो जाएगा और आगे वाला भी निष्फल हो जाएगा, फिर भी दुखी भोगती रहेगी। फिर हमने उसको बड़े प्यार से सिर के ऊपर हाथ फेर के मैं बोला देखे हम तेरे भाई हैं, तेरे हित के लिए बात करें, तुम बाबा से दृष्टि ले और तेरे लिए हम भी योग करेंगे, तुमको मुक्ति मिल जाएगी, तेरे सारे विकर्म खत्म हो जाएंगे। बड़ा प्यार से फिर उसने दृष्टि लेना शुरू किया दो तीन मिनट दृष्टि लेने के बाद वो फिर नॉर्मल अवस्था में आ गई। वो बहन थी, बहन के अंदर भाई की सोल आई थी वो, तो दो तीन बदले की भावना उसके अंदर इतना कूट कूट के भरी थी, तो वो तो स्पष्ट रूप से थी, लेकिन गुप्त का तो बाबा ने कहा ना और ही खतरनाक है, तो वो स्पष्ट रूप से थी। तो फिर उसके बाद वो बहन नॉर्मल अवस्था में आई, फिर धीरे धीरे सामान्य रूप में, फिर वो जो उनके साथी भाई था तो उसके हवाले किया, फिर हम आगे थे। फिर 2 साल के बाद वो भाई यहां मिला था, दिल्ली वाला एक सेंटर का है, सेंटर का नाम तो नहीं बताएंगे हम। तो वो हमने पूछा क्या हाल, बोला अभी नहीं आती उसमें। तो आत्माएं जो गुप्त रूप से है उनको पहचानना तो बड़ा कठिन है, जो स्थूल रूप से बाबा कह रहे हैं वो तो आसान है, और बाबा कहते हैं ये तो बहुत होने वाला है और ये होता भी है, और सूक्ष्म रूप में हमारे ऊपर ही आत्माओं का कितना प्रभाव है, हम ये ना सोचे कि हमारे ऊपर स्थूल रूप से नहीं आ रही, लेकिन सूक्ष्म रूप में पता नहीं कितनी आत्मा अंदर में घुसी हुई है। हाँ एक में 10-10 घुसेंगी, वो तो घुसेंगी, लेकिन घुसी हुई कितनी है क्या पता है। अभी जैसे आप इतने लोग हैं तो इतने लोगों का जो चेहरा या फेस या संस्कार है वो सब हमारे अंदर ही है, लेकिन सबके संस्कार अलग अलग हैं, कौन से संस्कार किस में काम करेंगे पता नहीं है। वो सूक्ष्म रूप से वही बाबा ने बोला सूक्ष्म रूप से बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो वो आत्मा थी। एक और एग्जाम्पल है यहाँ, ये क्या नाम इसका, एवर हेल्दी हॉस्पिटल, एक भाई मधुवन समर्पित है, उसकी भतीजी थी एक नेपाल की, वो हाँ अर्जुन तो उनकी भतीजी थी, शायद 15-16 साल की होगी उस समय। तो वो डिस्पेंसरी में यहाँ उसके अंदर भी सोल आती थी, लेकिन वो सोल बड़ी इनोसेंट सोल थी, वो तंग नहीं करती थी। तो एक बार हम गए थे उनके पास, आशीष भाई के पास, तो बातों पता चला कुछ वहां कुछ हो रहा है, तो हम वहां चले गए। तो वहां उससे मैंने बात की, तो बात की वो ना हाथ पकड़ के अंगूठा चूसना शुरू कर देती थी, है ना। और फिर हमने उसको पूछा कि तुम कहां से आई है, तो मैंने उसको पूछा तुम कहां बैठी हो अभी, बोला भी मैं शांति स्तंभ पर हूं। मैंने शांति स्तंभ पर कहा, तुम तो हिमाचल में बैठी है अभी। तो मना हमने उसको बड़ा ये किया कि हाँ, उसको असमंजस में डाला कि तुम इधर नहीं, बोला ना मैं इधर ही हूं। मतलब तुमको कैसे पता चला, बोला मैं इधर, मुझे टोली खानी है अभी। मतलब टोली थोड़ी मिलती है इधर, टोली वोली कहां से मिलेगी तुमको अभी, नहीं मुझे टोली खानी है, मैं फिर जाऊंगी टोली खा के जाऊंगी। तो वो आत्मा बीक के आती थी उसके अंदर में। हाँ इस तरीके से तो वो थी। और क्या पूछा, हाँ मैं बोला तुम इसके अंदर क्यों आई, बोला मैं इसके अंदर शांति वन में भी बाबा के होते हुए इसके अंदर आने का प्रयास किया, लेकिन मैं आ नहीं पाई क्योंकि बहुत शक्तिशाली वातावरण था। तो मैं बोला तुम पांडव रंग कैसे आ गई इसके अंदर, यहां तो और ही शक्तिशाली वातावरण है। बोला ये जो है ना अमृत वेली उठती नहीं है, इसके लिए इसके अंदर आ गई मैं। तो देखो कैसे कैसे आत्मा को कमजोर के पा रही, इसलिए अगर अमृत वेले नहीं उठे तो तो ऐसे बोला था उसने कि अमृत वेले उठती नहीं है। तो ये किया था, और भी बहुत सारे हुए। एक डॉक्टर श्रीमंत के सामने आए थे हमारे, हैं उड़ीसा की माता थी, उसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, यहीं की बात है। वो डॉक्टर श्रीमंत इधर क्लास करा रहे थे, तो उड़ीसा की माता थी, उसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, उड़िया भाषा आती थी, लेकिन वो उसने हिंदी में बोलना चालू किया, और उस माता के अंदर 16 साल कन्या की आत्मा आती थी वो। उसको फिर श्रीमंत भाई डॉक्टर ने आह्वान करके उनका कोर्स कराया था। और एक बार क्या होता था, पहले डॉक्टर श्रीमंत रात को भट्टियां चलती थी बहुत बार, तो एक बार हम ग्लोबल हॉस्पिटल गए थे, शायद देवेंद्र भी हमारे साथ ही थे, चिमन भाई भी थे, तो वहां भट्टी चल रही थी, लगभग रात के 12 बजे होंगे, तो 12 बजे का तो पता है एटमोसफेयर तो बहुत हैवी होता है, तो वहां जागृत अवस्था में रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो डॉक्टर श्रीमंत भाई कमेंट्री करा रहे थे, तो कमेंट्री में सम्मान किया दिया, और पीछे बहने बहने सब बैठी थी, ग्लोबल हॉस्पिटल की भाई भी बैठे थे, और सम्मान दिया, मैं मास्टर भूतनाथ हूं। 12 बजे तो जब ये सम्मान दिया तो पीछे से देखा हमने, एक एक बहन करके उठ गई सारी। सब गायब। भाई भाई देखे बहने कहा गई, डर के मारे भाग गई वो। आप भी थे अपने निखिलेश भाई? आप नहीं थे? ये गेंद्र भाई, देवेंद्र था, नागेश भाई थे शायद। तो ऐसे ऐसे होता है। तो बाबा यहां कह रहे इससे मुक्ति का साधन क्या है अभी, तो इसमें बाबा ने बताया बचत की स्कीम बनाओ। कौन कौन सी? इस मुरली में पहले बाबा ने कहा जो बिंदु रूप की बात बताई कि बिंदु रूप की अवस्था का अभ्यास, लेकिन इससे पहले बाबा ने कहा बिंदु रूप की अवस्था का तब अभ्यास सहज होगा जब सारे दिन में अव्यक्त स्थिति का उसकी अनुभूति में रहेंगे, अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बिंदु रूप का सहज होगा। इस यहां नहीं लिखा हुआ वो, लेकिन मुरली में ऐसे है कि अव्यक्त स्थिति में जितने लंबे समय से रहेंगे तो बिंदु रूप की प्रैक्टिस करने का अभ्यास भी सहज हो जाएगा। तो यहां बाबा ने जो विधि बताई है कि इनसे मुक्त होने का जो साधन बताया कि अपनी बचत की स्कीम बनाए, कौन सी? समय, संकल्प और अपनी शक्ति। हमारा समय कहां कहां जा रहा है, हमारे संकल्प कहां कहां उलझे हुए हैं, शक्तियां जो हैं हमारी कहां जाती जा रही है। जैसे मान लीजिए अभी हमने अमृत वेला किया, ज्ञान का मनन चिंतन कर रहे हैं, ये हमारे अंदर शक्ति भर गई, लेकिन सारे दिन में यह शक्ति फिर कहां जा रही है? अगर ये भरने के बाद भी उस शक्ति का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, व्यर्थ में जा रही है, तो फिर भी जमा नहीं होगा और आत्माओं का अटैक होगा, आत्माएं प्रभाव डालेंगी। तो इसमें बाबा ने कहा इसके लिए जितना हो सके बिंदु रूप की स्थिति को बढ़ाओ। कोई भी इविल स्प्रिट व इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर फिर बार नहीं करेगा, और आप लोगों का शक्ति रूप ही उन्हों को मुक्त करेगा, क्योंकि बाबा ने पहले से कहा कि अंत में जो आत्माएं आएंगी वो कमजोर होंगी, उनको मुक्त कौन करेगा। तो इसमें यह भी कहा कि अगर स्वयं ही अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं होंगे तो दूसरों को मुक्त कैसे करेंगे। तो जितना बिंदु रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्प्रिट व इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर बार नहीं करेगा, और आप लोगों का शक्ति रूप ही उन्हों को मुक्त करेगा। यह भी सर्विस करनी है, इविल स्प्रिट को भी मुक्त करना है, क्योंकि अभी अंत के समय का भी अंत है, तो इविल स्प्रिट व इविल संस्कारों को भी अति में जाकर फिर उन्हों का अंत होगा। देखते हैं जब हम संबंध संपर्क में आते हैं, जब देखते हैं बहुत साल से ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन फिर भी वो संस्कार के रूप में निकल रहा है बाहर, वो कहां से है? तो बाबा ने इविल जो बताया इविल संस्कार, ये इविल संस्कार भी इविल स्प्रिट के रूप में प्रत्यक्ष हो रहे हैं, और ये हम सबके अंदर ही है, ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं है, मेरे में नहीं, सबके अंदर ही है ये। लेकिन इसको परख कर इनसे मुक्त होना ये स्वयं ही अपने स्तर पर हम कर सकते हैं। और आप लोगों का शक्ति रूप ही उन्हों को मुक्त करेगा, ये भी सर्विस करनी है, इविल स्प्रिट को भी मुक्त करना, क्योंकि अभी अंत के समय का भी अंत है, तो इविल स्प्रिट व इविल संस्कारों को भी अति में जाकर फिर उन्हों का अंत होगा। किचड़ा सारा बाहर निकलकर भस्म हो जाएगा, किचड़ा तो सबका बाहर आएगा, ये तो आना ही है, चाहे कैसे भी संस्कार हैं, और वो आना ही चाहिए। अगर वो हमारे सामने आता है, हमारे अपने संस्कार बाहर आते हैं, चाहे क्रोध के हैं कोई भी हैं, तो हमको उनसे घबराना नहीं है। ऐसे बताते ना कि साक्षी होकर देखना है उनको, उसको नजरअंदाज नहीं करना है, कि दबा के नहीं रखना मेरे में प्रत्यक्ष नहीं हो। अगर हमको क्रोध आ गया तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमको कम से कम पता तो चलेगा कि हमारे में है, कि हमको अभी इससे मुक्त होना है, नहीं तो हम अपने आप को यही समझते रहेंगे मेरे तो अंदर है ही नहीं, अभी तो मैं इससे मुक्त हो चुका हूं। तो परिस्थितियां आनी चाहिए, कोई ना कोई सामने से कटाक्ष करना ही चाहिए वो, ताकि हमारी जो है बीमारी बाहर निकले और उसकी दवाई समय पर ट्रीटमेंट उसका करके उससे मुक्त हो सके। तो बाबा कह रहे हैं अपनी समस्याओं से ही मुक्त नहीं होंगे तो इन समस्याओं से कैसे सामना करेंगे, इसलिए कहते हैं बचत की स्कीम बनाओ। और प्रैक्टिकल में लाओ, तब अपना और सर्व आत्माओं का बचाव कर सकेंगे। सिर्फ भाषण करने व सर्विस करने सर्विस या समझाने की सर्विस नहीं, अभी तो सर्विस का रूप भी बड़ा सूक्ष्म होता जाएगा। और विशेषकर हम जब योग में बैठते हैं संगठन में, उसमें ये प्रयोग करना है। सब आत्माओं को, संसार की जितने भी आत्माएं हैं, कौन सी इवल, वैसे तो इवल यहाँ चर्चा इवल कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो है वो तो है ही है, सबको ही मर्ज करना वही संगठन में, लेकिन विधिपूर्वक। पहले से स्वयं, पहले तुरंत जाते नहीं मर्ज कर लेना, पहले स्वयं को थोड़ा शक्तिशाली बनाएंगे और उनका आह्वान करेंगे, बाबा से कंबाइंड रूप में होके उनको इमर्ज करेंगे, उनको शक्ति देंगे, अपने अंदर अपने चारों तरफ एक शक्तिशाली ओरा क्रिएट करेंगे, एक छत्रछाया के अंदर में रह के उनको सागास देंगे, तो हमारी उनसे मुक्ति होती जाएगी। नहीं तो रात को दबाएंगे आत्मा शांति के ऊपर बैठ के, और ऐसे होता है ऐसे हमारे साथ भी बहुत हुआ है, लेकिन हम कभी घबराए नहीं है। पहले हम यहाँ रहते थे ओम शांति यूनिवर्सिटी के बाजू में कमरे में, फिर कुछ दिनों के लिए ऊपर चले गए थे, तो जो ऊपर वाला कमरा ना, यहाँ बहुत प्रभाव पड़ता था, और अकेला था मैं उधर ऊपर वाले कमरे में, हॉल कमरा, तो वहां रात को स्पष्ट दिखाई देता था कि कोई आके तुरंत छाती पर बैठ गया, ऐसा नहीं छाती पर हाथ रखा, हाथ बात कुछ नहीं होता था वो और स्पष्ट दिखाई देता था कोई पास में आके यहाँ खड़ा है, और जैसे वो आके खड़ा है तो थोड़ी स्मृतियां तो रहती हैं हमको बाबा के ज्ञान की या सुमान की, तो कोई ना कोई सुमान आने के बाद वो आत्माएं वहीं रुक जाती थी, और वहीं से जैसे उसको थोड़ी बहुत अनुभूति होके वो वापस लौट जाती थी, क्योंकि बाबा ने कहा शांति की अनुभूति कहां से लेंगे, जो शांति की अनुभूति करने के लिए उन्हीं के पास आएंगे ना जो शांति से संपन्न होंगे, तो ये तो सब बाबा कहते होने वाला है और होना भी चाहिए, क्योंकि मुक्ति कौन करेगा उनको। तो अभी सूक्ष्म रूप की स्थिति को ही बढ़ाओ, सभी प्रत्यक्ष होकर फिर प्रायलोप होंगे, तो लोप होने के पहले फिर प्रत्यक्ष हो फिर प्रायलोप हो जाएंगे, माना ये आत्माओं का जो प्रभाव है इनसे मुक्त होते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली बाबा ने कहा वो आत्माओं से मुक्ति होती जाएगी और स्थिति बढ़ती जाएगी। लेकिन हमको ये भी नहीं करना है कि अभी हमारी स्थिति लंबे समय से ठीक चल रही है, हमारे पर कोई प्रभाव नहीं है, हमको फिर भी काम करते रहना है, क्योंकि बाबा ने कहा अंत में सर्विस इतनी बढ़नी है जो एक एक को दस दस का कार्य करना पड़ेगा सूक्ष्म रूप से। दस दस आत्माएं क्या, ढेरों आत्माएं आएंगी संसार में, इतनी आत्माएं श्री छोड़ जी कहां जा रही है वो, तो स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म सर्विस भी करनी है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना या बोलना है इवल स्प्रिट के बारे में तो इनसे वास्तव में घबराने के, क्योंकि वो आत्मा बेचारी कमजोर है, कहां जाएंगी, तो अगर हमारा उनके प्रति रहम दिल है, शुभ भावना कामना है, तो हमारे ऊपर बार नहीं करेंगी। बार हमारे पर व्यक्ति तब करता है जब हम उसके बारे में कोई ऐसा चक्कर व्यू जरा चले, उल्टा चक्कर व्यू है, हाँ नीचे जो एक रास्ते में बस गिरी थी, तो एक माता कितने दिन तक वो यहाँ माच गांव में आती रही रात को भी, तो ये सारा है संसार में, लेकिन पुलिस हाँ वो पुलिस वाले को मार दिया उसकी माता ने ऐसा, लेकिन हमने सुना है खाली देखा नहीं है, क्योंकि हम उस बात का वर्णन कर सकते हैं जिस बात के अनुभव से हम गुजरे हुए हैं। कई बार सुनी सुनाई बातों में ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो ये बातें होंगी और होनी है, लेकिन हमको इनसे घबराना नहीं है। बताया ना कि बार तभी करेंगी जब हमारे अंदर उनके प्रति कोई नेगेटिव भावना है, कोई बदले की भावना है, जब हमारे अंदर सबके प्रति कल्याण की भावना, रहम की भावना, शुभ भावना है, तो फिर वो क्यों अटैक करेंगे हमारे पर, क्योंकि वो समझती तो है आत्मा पर, क्योंकि जो आत्मा बिना शरीर के वो तो हमारे विचारों को पहले परख लेगी, वो कमजोर आत उसके बच्चे के अंदर घुसी कैसे पता चल गया उसको कमजोर है, बोला अमृत वेली उठती नहीं है, कमजोर है इसलिए मैं आ गई इसके अंदर, तो उनकी परख शक्ति, क्योंकि वो तो बॉडी से बाहर है, वो तुरंत सारा पड़ रही है अंदर में क्या क्या चल रहा है, तो अगर सबके प्रति शुभ भावना रैम की भावना तो आत्माओं का अटैक नहीं होगा, वो तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको ये प्रैक्टिस पहले से करना बहुत लाजमी है, और ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ना ही है, देख रहे हैं संसार में अनावश्यक रूप से अपना अचानक कैसे कितने लोगों को मौत हो जाती है, वो कहां जा रही है आत्माएं, और ये तो होना ही है। ओके, ओम शांति।